श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच,
श्री भगवान उवाच,
लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा,
लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा,
पुरा प्रोक्ता मया नग,
प्रोक्ता मया नग,
ज्ञानयोगेन सांख्याना, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं।
ओम ज्ञानतिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम्, श्रीगुरो वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सार्वजातं, सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं, सार्वैकं सावधूतं, परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधाकृष्णपादान्, सगणललिता श्रीक्षाकान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। सो तीसरा श्लोक श्री भगवान वाच। शुरुआत कैसे है तीसरे श्लोक की? श्री भगवान वाच, लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो तीसरे अध्याय के इस श्लोक से 3.3 to 3.9, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से तो तीसरे अध्याय के नौवें श्लोक तक क्या है, कौन से विषय की चर्चा है?
निष्काम
कर्म योग। और पहले दो श्लोक में क्या हुआ? 3.1 एंड 3.2, तीसरे अध्याय कर्म करे कि ना करे, करे तो क्यों करे, ना करे तो क्यों ना करे, और कर्म श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है? अच्छा, भक्ति करने से कर्म करने की आवश्यकता है कि नहीं है? क्या है आवश्यकता है कि नहीं है? कंफर्म? पूरा विश्वास है? देखिए, अर्जुन को नहीं था, अर्जुन विचार कर रहे तो अर्जुन तो हमारे से बहुत बड़े ऊंचे स्तर पे है, उनके सामने संभ्रम की स्थिति निर्माण हो गई है, हम तो तुरंत बोल रहे हैं कि आवश्यकता है, अर्थात हमारी भक्ति क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कर्म योग किसको कहते हैं कर्म योग? पहले अध्याय का नाम क्या था? सैन्य निरीक्षक। दूसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का नाम क्या था? गीता का सार, सांख्य योग। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। सो कर्म, भगवत गीता के पहले ही दिन इस विषय की चर्चा हुई है 2 साल पहले, कि भगवत गीता के 18 अध्याय है, पहले 6 अध्याय कर्म योग, 1-6 पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक कर्म योग, और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग, और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग। सो सभी सारे शास्त्रों की मान्यता है, आचार्यों की मान्यता है, संतों की मान्यता है, सारे भक्तों की यह मान्यता है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। कोई डाउट है, कोई संशय इस पे? तो ये भक्ति योग के 6 अध्याय बीच में क्यों डाल दिए, और सबसे प्रथम 6 अध्याय कर्म योग? पहले 6 अध्याय भक्ति योग होने चाहिए, परंतु पहले 6 अध्याय कर्म योग ऐसे क्यों, और भक्ति योग को बीच में क्यों रखा गया? हाँ, सैंडविच, वड़ा पाव नहीं, सैंडविच का उदाहरण दिए थे। क्या उदाहरण था सैंडविच का? हाँ, आपको चीज सैंडविच दिया है, उसमें से चीज निकाल लिया। चीज सैंडविच क्या होता है? नीचे एक ब्रेड, ऊपर एक ब्रेड, और बीच में बटर है। चीज होता है, बटर होता है। मान लो उस ब्रेड के बीच में बटर नहीं डाला या चीज नहीं डाला, खाएंगे सैंडविच? क्यों? हाँ, स्वाद नहीं, रस नहीं। भक्ति अर्थात रस। जब तक यह भक्ति का, भक्ति अर्थात रस, कौन सा रस? प्रेम रस। और प्रेम अर्थात सेवा, सेवा अर्थात समर्पण। सेवा अर्थात समर्पण। सो जब तक कर्मयोग, कर्म करते हुए भगवान से यदि जुड़ना है तो उसमें भी समर्पण चाहिए, तभी तो कर्मयोग होगा। तो पहले 6 अध्याय बहुत कठिन है, वास्तव में देखा जाए पहले 6 अध्याय का कठिन है। भक्ति योग तो प्रेम ही प्रेम है। पहले 6 अध्याय इसलिए कठिन है कि कर्म करना चाहिए, कर्म करने के लिए हम यहां पे आए हैं, लेकिन कैसे करें यह नहीं जानते। और ज्यादातर यह होता है कि गलती कर बैठते हैं कर्म करते वक्त, और पूरा जीवन उस कर्मों के फल भोगने में निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है कब निकल गया है। सो भक्ति योग इसलिए भगवान ने बीच में कहा प्रथम कर्म योग, और अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान योग कहा, क्योंकि भगवान इन दोनों में भक्ति का स्पर्श करवाना चाहते थे। अर्थात कोई कर्मयोगी हो तो भी वो भक्ति करे, कोई ज्ञान योगी हो तो भी वो, अर्थात भक्ति कंपल्सरी। दूसरी बात, ये जो भक्ति है, ये भक्ति इस कलयुग में कहते हैं टॉप मोस्ट सीक्रेट है कि नहीं? सीक्रेट अर्थात गुह्य ज्ञान। ये जो भक्ति है, भक्ति क्या है, बहुत सीक्रेट, बहुत गुह्य ज्ञान है। कोई सीक्रेट बात है आपके पास, कोई सीक्रेट वस्तु है या बात है, कोई वस्तु है जो आप ही जानते, बहुत सीक्रेट है, कैसे रखेंगे उस वस्तु को आप? सबसे आगे रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। कहां रखेंगे? बीच में छुपा के रखेंगे ना, बीचों बीच ऐसा ही करते हैं ना, बीचों बीच छुपा के रखते हैं। भगवान ने इसलिए भक्ति योग को छुपा के रखा, हिडन साइंस, उसको हाइड कर दिया कर्म और ज्ञान के बीच में, क्योंकि सीक्रेट है प्रभु जी, है आसान। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे,
हो गई भक्ति इतना आसान। प्रभुपाद जी को पूछा गया एक बार, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भक्ति बहुत आसान है, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत आसान है, कोई कठिनाई है, कोई कठिनाई है, बहुत आसान है, परंतु उसको गंभीरता से लेना होगा। भक्ति आसान है परंतु गड़बड़ कहां पे है, गंभीरता से नहीं लिया जाता, ये गड़बड़ सबसे भारी है कि नहीं। भक्ति तो आसान है, प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं आसान है, परंतु हमारी प्रॉब्लम है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए उसी को नहीं लेते हैं, वह छोड़ के सारी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, यह कलयुग का दोष है। तो इस प्रकार से यह एक कारण है, क्योंकि गुह्य ज्ञान है इसलिए भगवान ने उसको क्या किए, छुपा के रखे। लेकिन छुपाया कैसे, इस भाव से नहीं छुपाया कि साधारण जीवों को वितरित नहीं करना, किस भाव से भगवान ने उसको बीचों बीच रखा, तो यह भाव कि जो कोई कलयुग में जीव इस भक्ति मार्ग से भटकते हुए यही यहां वहां के कोई मार्ग को अपनाएंगे, उनके भी हृदय में समर्पण का भाव आ जाए, वह भी प्रेम की भाषा बोले। इसलिए मनुष्य का धर्म क्या है, कहते हैं वो दूसरे आप संप्रदाय वाले भी कहते हैं, कोई संप्रदाय सत्संगी नहीं है तो भी वो क्या कहते हैं, प्रेम धर्म। बात करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है क्या होता है ये, परंतु बात करते हैं इस प्रकार से। जो भक्त इस सीक्रेट को जानते हैं वो बात करते करते इस प्रेम धर्म का पालन भी करते हैं, उसका आचरण भी करते हैं, यह फर्क है। फिर आचार्यगण और इसका एक कारण बताते हैं, उदाहरण बताते हैं कि क्यों भगवान ने कर्म योग को प्रथम रखा और भक्ति योग को बीच में और फिर ज्ञान योग को। कोई राजा होता है, मान लो राजा कहीं जा रहे हैं, किंग बंबई से जा रहे हैं समझो, पुणे राजा है बहुत बड़े, तो कैसे जाएंगे, डोली में बैठ के जाएंगे, रथ या बहुत बड़ा रथ सजाया जाएगा उनके लिए, है कि नहीं। तो रथ में राजा बैठ जाते हैं तो उनका रथ सबसे आगे रहता है क्या, कहां रहता है, बीच में रहता है, आगे सैनिक पीछे सैनिक। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जो अतिशय महत्व का व्यक्तित्व है वो है राजा, वो कहां रहते हैं, बीच में रहते हैं और आगे पीछे सैनिक रहते हैं। इसी प्रकार से भक्ति योग यह विषय बीच में है और आगे और पीछे कर्म योग और ज्ञान योग है। तो हम तो अभी कर्म योग समझने का ही प्रयास कर रहे हैं, इसको काफी समय लग सकता है क्योंकि यही बहुत महत्व का विषय है, इसको यदि समझते हैं तो हमारे रोज के प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे, रोज के असंख्य प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे उसका, और हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, जो कि आगे के श्लोक से। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन के उन दो बातों का या दो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जो पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछे थे। अब कौन से प्रश्न पूछे थे बताइए, पहला प्रश्न 3.1, 3.2 या 3.2 में ही शायद, दो प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने और उन दोनों प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में, हमने कहा था भगवद गीता अर्थात क्वेश्चन एंड आंसर डायलॉग, दो लोगों के बीच की चर्चा, इसमें अनेक प्रश्न उठते हैं। ये प्रश्न क्या था, वो बोले 2.39 2.31, उसमें क्या बोले थे भगवान, आप उसमें एक बार आप बोले थे कि कर्म करो कर्म श्रेष्ठ है, फिर आगे जाके जब 39 तक आए तब आपने बोल दिया जो कोई बुद्धि योग में स्थित है उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए बुद्धि योग कर्म से श्रेष्ठ है। अब क्या समझूं मैं, कर्म श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, जरा आपकी भाषा जो है मिक्स हो रही है, मिश्रित अर्जुन बोले आपकी जो भाषा है जरा मुझे, आपकी भाषा मिश्रित नहीं है, मुझे लग रहा है मिश्रित है। आप तो बड़े दिव्य स्तर पे भगवान, आप गलती नहीं कर सकते, परंतु मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि आप डबल लैंग्वेज कर रहे हैं, दो दो बातें एक साथ जोड़ रहे हैं। एक तो बोलते हो कि कर्म जो कर्म श्रेष्ठ है, फिर कहते हो जो बुद्धि योग में स्थित है उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या श्रेष्ठ है जरा निश्चित बताइए। और पहले क्या कहे थे, सबसे पहला प्रश्न, ये तो दूसरा हो गया। पहला प्रश्न था कि हे भगवान, यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में, युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? प्रश्न है ना स्मरण में, प्रश्न स्मरण में रखिए, बहुत आवश्यक है। तो ऐसे घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? और दूसरी बात, क्या श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है? तो इस इन प्रश्नों के उत्तर भगवान अभी तीसरे श्लोक से देते हैं। तो इसलिए कहा गया श्री भगवान वाच। श्री भगवान जानते हैं आप सब, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। श्री भगवान, भगवान किसको कहते हैं, कौन से षड, षड ऐश्वर्य कौन से, सबसे ज्ञानी, सबसे वैराग्य, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण, परिपूर्ण थोड़ा थोड़ा नहीं, परिपूर्ण महत्व का विषय है। किसी के पास हो सकते षड ऐश्वर्य, परिपूर्ण नहीं होते, थोड़ा ही होते। तो परिपूर्ण षड ऐश्वर्य परिपूर्ण, और श्री भगवान उवाच। षड ऐश्वर्य में एक सबसे बड़ा एक ऐश्वर्य है ज्ञान, सबसे बड़े ज्ञानी, ऐसे सबसे बड़े ज्ञानी उवाच। तो सबसे बड़े ज्ञानी उवाच का अर्थ होता है श्री भगवान यहां पे ज्ञान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्ञान देना चाह रहे। श्री भगवान उवाच अर्थात ऐसे भगवान जो सबसे ज्ञानी है वो बोल रहे हैं। अर्थात बोलने में क्या करेंगे वो, जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है जब वो बोलता है तो कैसे बोलता है, ऐसे ही बोलता है टाइम पास, कैसे बोलता है, ज्ञान की बात बोलेगा है? उत्तम ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, दिव्य ज्ञान है ना। श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान जो दे रहे इस पर, यहां पे बोल रहे हैं अर्थात वो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अब ज्ञान तो भगवान ही दे सकते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते ज्ञान? कई लोग भगवान बन जाते हैं संसार में, आप जाएंगे अचानक किसी को पता चल जाता है, अरे 25 साल तक तो मैं बटाटा बेचता था, अचानक मुझे याद हो गया मैं तो भगवान हूं, आज से मैं भगवान। 15 दिन बाद 8 दिन बाद देख के आओ तो भगवान का रूप ले लेते हैं, भगवान बन जाते हैं ना, कई बन जाते हैं, कई है। मैं किसी को स्पेशली नहीं बोल रहा हूं, पर मैं अभी तक 40 वर्ष के इस सफर में कई भगवानों को मिला हूं और आप भी मिले होंगे आशा करता हूं। और एक ने तो हमको बुला, रहे काहे को चिंता करते हो, भगवान को कहां ढूंढते हो, मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। परंतु हम भगवान नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर चार दोष है। और भगवान के अंदर श्री भगवान वाच अर्थात ये जो श्री कृष्ण भगवान है इनमें ये चार दोष नहीं है, इसलिए वो यहां पे उवाच कर रहे हैं, हम उवाच नहीं हो सकते। इसलिए उपदेशामृत में हमको कहा गया है, पहले श्लोक में ज्यादा बोलो मत, क्या कहा गया है, डोंट वाच, ज्यादा बोलो मत, बोलना नहीं है। वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगो, इस वेग को कंट्रोल करो, वाचो सबसे पहले वाचा का वेग नियंत्रित करो। आपके पास आवेग आ सकते हैं, भगवान के पास नहीं, हम आवेग से हैरान हो सकते हैं, भगवान नहीं, और इसलिए हम भगवान नहीं बन सकते। हमारे अंदर चार डिफेक्ट है, कई बार इसकी चर्चा होगी। पहला है भ्रम, है कि नहीं? भ्रमित होते हैं ना हम, जो सच्चा है उसको, जो नहीं है उसको मान लेते हैं, जो है उसको क्या करते हैं, मानते नहीं। भ्रम, भ्रम एक ऐसी वस्तु है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कई बार कहते हैं अंधेरे में यदि कोई रस्सा पड़ा हो तो क्या दिखता है, कभी कभी सांप दिख जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं। वो भ्रम है, शरीर का शारीरिक भ्रम, शरीर से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे भ्रम है। ये आंख जैसे देखा, आंख का भ्रम। दूसरा मन का भ्रम। मन का भ्रम कौन सा है? आधी आधी कप चाय पी लेते, बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, ठंडी का समय है, गर्मी अच्छा, आधी कप चाय मन को अच्छा लगता है। कौन सा भ्रम है? अच्छा लगना, खराब लगना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मन का भ्रम। चलो ये भी ठीक है। बुद्धि का भ्रम कौन सा है? भगवान का तो शरीर दिव्य है, तो शरीर के भ्रम का कोई? सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अब उनको क्या शरीर का भ्रम होगा, वो तो सच्चिदानंद विग्रह है। जब शरीर से ही कोई भ्रम नहीं होगा तो मन कहां चंचल, मन कहां आवेग में फंसेगा, मन तो शुद्ध रहे। तो भगवान के पास तो भ्रम का कोई चांस नहीं। हम तो शरीर से भी भ्रमित हो जाते हैं, शरीर भी भ्रमित करता है हमको, नहीं? कभी कुछ खाने को मांगता है, कभी कुछ खाने को मांगता है। चतुर्मास का या कार्तिक मास का एक महीना पक्का उपवास करो, जैसे ही कार्तिक मास पूर्ण होता है एक महीना पूरा उबाल के सब खाया, और जैसे ही भीष्म पंचक समाप्त हुए पहले ही दिन तो शरीर भी हमारा हमको भ्रमित करता है, मन भी हमको भ्रमित करता है। सबसे बड़ा हम जिस भ्रम में फंसे हैं वो कौन सा भ्रम है, कोई बता सकता है? वो है बुद्धि का भ्रम। वो क्या है? मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं मैं क्या हूं? 200 रुपए का शरीर मैं हूं, बस। कीमत कितना है? 200 रुपए की बैग है, बैग चमड़ी की बैग 200 रुपए की, लेकिन समझता ये हूं कि मैं यही हूं। क्या? शरीर हूं। शरीर का ही तो मेंटेन करना पड़ेगा ना प्रभु जी, शरीर का ही तो रख रखाव करना पड़ेगा, ऐसा सोचता हूं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, और पूरे गीता का ही नहीं सारे समग्र शास्त्रों का सार क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। और हमारा सार क्या है बुद्धि का? मैं शरीर ही हूं, और शरीर के लिए क्या कहते हैं, शरीर के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा, ये मेरा शरीर को सुख रख, सुखी रखना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा है, शरीर के पीछे पागल हो जाते हैं और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, यह बुद्धि का भ्रम। परंतु भगवान श्री कृष्ण देखिए, जैसे ही उनका जन्म हुआ कारागृह में, भगवान ने सर्वप्रथम अपने माता पिता को उपदेश दिया। उस उपदेश में भगवान ने कहा, पहले तुम कौन थे, कौन से जन्म में थे, और मैं क्या हूं। जन्म होते से ही बताइए, कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं थी। जन्म ही भगवान ने इस प्रकार से अपने ही माता पिता को उपदेश दिया कारण, तो भगवान के पास भ्रम नहीं। इसलिए श्री भगवान वाच वो कभी भी भ्रमित नहीं होते। इवन भ्रमित होने अच्छे अच्छे भक्त भी भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि माया बड़ी परीक्षा लेती है। जब सत्राजित नाम के एक राजा, सत्राजित जानते हैं तब श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, सत्राजित जब श्यामंतक मणि धारण किए हुए द्वारका में चल रहे थे, द्वारका की ओर आ रहे थे। सारे द्वारका वासी ओहो 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 सूर्यदेव आ गए, सूर्यदेव आ गए। क्या समझे? सूर्यदेव आ गए। इतना तेज, उस तेज के कारण सभी सोच रहे सूर्यदेव आ गए, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे बैठे रहे ये तो श्री कृष्ण भ्रमित नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है कभी भी किसी भी स्थिति में भ्रमित नहीं होते। इवन वृंदावन लीला में भी उनके सारे मित्र भ्रमित हो गए, सखागण जो नित्य कृष्ण के निकट रहते हैं, सत्संगी महासत्संगी। जब अघासुर मुंह फाड़ के बैठ गया अपना बहुत बड़ा, तो सभी सखागण सोचने लगे अरे ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, चलो इस पहाड़ में गायों को ले जाते हैं चराने के लिए। जब अंदर गए जाने लगे तो बोले अरे वाह कितना बढ़िया पहाड़ है, इसका तो रोड लाल है, इसके अंदर जाने का जो रास्ता है बड़ा ही सुंदर, रेड कारपेट आजकल होता है ना, रेड कारपेट वेलकमिंग। तो ये तो लाल है। और जैसे ही अंदर गए तो अघासुर सांस ले रहा था, तो अंदर हवा लग रही थी, तो बोले आहा ये तो क्या बढ़िया पर्वत है, इसके अंदर तो बहुत सुंदर हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, आंधी की जैसी हवा चल रही है। देखिए भ्रमित हो गए। कृष्ण भी अंदर गए, उस अघासुर के मुख के अंदर भगवान भी गए, कृष्ण भी गए, लेकिन किस भाव से? वो ये समझ गए कि ये तो अघासुर है और मेरे मित्रों को, मेरे सखाओं को, मेरे भक्तों को मुझे बचाना है, इसलिए मैं इस असुर का नाश करूंगा। उसका नाश करने के लिए वो अंदर गए, भ्रम के कारण नहीं गए, वो भ्रम का नाश करने के लिए जाते हैं। हमारा भ्रम का नाश करने के लिए आते हैं, हमको भ्रम से बचाने के लिए आते हैं। आते हैं ना, अनुभव है सबको। प्रभु जी उस दिन बता रहे थे, प्रभु जी का बहुत ही सुंदर अनुभव है, कभी प्रभु जी को पूछना, द्विजानंद प्रभु उन्होंने बताया कैसे भ्रम का नाश करते हैं। कभी कभी लेट करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा दोष हमारे अंदर है जो भगवान ने नहीं, उसको क्या कहते, प्रमाद, भ्रम, प्रमाद। प्रमाद अर्थात गलती करना, है कि नहीं? गलती तो हम करना अपना, गलती करना हमारा अधिकार है और उसको क्षमा करना भगवान का कर्तव्य है। ऐसा हमारा फिलोसफी है, इसलिए कई बार गलती करते हैं। पिछले रविवार के मीरा रोड के क्लास में एक भक्त हमको प्रश्न पूछे, हमने कहा कि आप, विषय था कुछ कि भक्ति करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, धाम में यात्रा में जाना चाहिए। तो उन्होंने प्रवचन के पश्चात उन्होंने कहा वो तो जब भगवान ले जाएंगे तब जाएंगे ना। कैसे जाएंगे? तो हमने उनको प्रति प्रश्न किया, वो सिनेमा देखने के लिए भगवान ले जाते हैं क्या? वहां कैसे जाते हैं? कभी कभी ड्रिंक भी करते हैं, तो ड्रिंक करने के लिए कैसे जाते हैं? भगवान ले जाते हैं कि स्वयं जाते हैं? कैसे जाते हैं? तो इसलिए गलतियां हम करेंगे, उसका क्षमा करने का कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट भगवान के पास किया हुआ है। गलतियां हम करते हैं, भगवान है, भक्त वत्सल है, भगवान क्षमा भी करते हैं, भगवान एक के बाद एक चांस देते हैं। शिशुपाल को भी दिया, हमको तो कई बार देते हैं, शिशुपाल को तो 100 ही बार दिया हमको तो। आप गिनिए थोड़ा सा, थोड़ा पीछे देखिए भूतकाल में कि भगवान ने हमको कितना चांस दिया, कितनी गलतियां की है हमने अभी तक, भगवान ने बचाया हर समय। ये समय बड़ा फास्ट चलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और ये हम जानते भगवान भक्त वत्सल है, भगवान क्षमा कर देते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं भक्त के लिए, इसलिए हम गलती करते रहते हैं, ठीक है। और इसी को महा अपराध कहा है, सब कुछ जानते हुए अपराध करना। 10 ऑफेंसेस में एक ऑफेंस बताया गया शास्त्र का ज्ञान रखते हुए भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भौतिक आसक्ति अर्थात क्या? भ्रम। आसक्ति है जानी सकती, अर्थात एक बार भ्रम में फंस गए कि फिर जा नहीं सकती, केवल वो भगवान ही निकाल सकते उसमें से। कोई आसक्ति हो गई किसी प्रकार से हमको, किसी वस्तु विषय या व्यक्ति से, तो वो जा नहीं सकती, इतना आसान नहीं है कलयुग में। उसको भगाने वाले केवल कौन है? श्री भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। विप्रलिप्सा, तीसरा दोष हमारे अंदर का कौन सा है? विप्रलिप्सा। या तो धोखा देते हैं, नहीं तो धोखा खाते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति ज्यादा है, धोखा खाने से तो बहुत बचते हैं, है कि नहीं? प्रयासरत रहते कि हमको धोखा न हो, परंतु यह भी प्रयासरत रहते कि दूसरे को कैसे धोखा दे। चीटिंग प्रोपेंसिटी उसको कहते हैं विप्रलिप्सा। परंतु भगवान, भगवान में यह दोष नहीं है। जब भगवान का जन्म होने ही वाला था, उसके कुछ ही क्षण पश्चात सारे देवताओं को पता चल गया था, और सारे देवता उनकी प्रार्थना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान में कोई दोष नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवता आचार्य ऋषि सब समस्त ब्रह्मांड के सारे जीव जो असुर नहीं है केवल, वो सब भगवान की स्तुति करते। तो कोई इसी में यदि दोष है तो कोई ऐसी स्तुति करेगा? वो निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं, इसलिए वो ज्ञान दे सकते हैं। और चौथा सब जानते हैं, कारणापाटव, अर्थात इंद्रिय कैसे हैं हमारे? इम्परफेक्ट, अपूर्ण है। इंद्रिय अपूर्ण है, हमारे शरीर के अंदर ही हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, शरीर के अंदर के शरीर के बाहर भी नहीं देख सकते। घना अंधेरा होने दो और अपना ही हाथ देखने का प्रयास करो, दिखता है? नहीं दिखता है। परंतु भगवान क्या है? भगवान के ऊपर किसी भी भगवान की इंद्रिय पूर्ण है, चिन्मय है। अपने आंख से भगवान खा सकते हैं, अपने मुख से भगवान देख सकते हैं, उनका चिन्मय सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद से परिपूर्ण उनका विग्रह था, दिव्य शरीर है, उसमें अपूर्णता कहां? इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान यहां पे बताया गया है श्री भगवान वाच, इसलिए भगवान वाच अर्थात ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान देने का अधिकार केवल भगवान में है। इसलिए हम ज्ञान नहीं दे सकते, हम क्या कर सकते हैं? हम चर्चा कर सकते। उस भगवान जी हुए ज्ञान का गुरु परंपरा में जो आचार्य गण आते हैं, उनसे उस ज्ञान को बड़ी नम्रता से स्वीकार करके हम आपस में चर्चा कर और प्रयास कर सकते हैं कि ये चार दोषों से मुक्त हो जाए, ये चार दोष हमारे अंदर से निकल जाए। और जब दोष निकल जाएंगे, निर्दोष हो जाते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम भगवान के महत कार्य प्रभुपाद जी के मिशन को सर अर्थात मिशन की सेवा कर सकते हैं। इसलिए तो चार नियमों का पालन करना पड़ता है कि नहीं? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। इसीलिए प्रथम विचार, फिर आचार, विचार आचार प्रचार, विचार शुद्ध होने के लिए फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल शरीर शुद्ध चाहिए। विचार शुद्ध आ जाएंगे, भगवत भक्ति के विचार आएंगे, भगवान के उपदेशों के प्रति विचार करेंगे तो हमारे अंदर दिव्यत्व आ जाएगा। उसका आचरण केवल विचार करने से, बहुत लोग विचार करते प्रभु जी मैं सोच रहा हूं आज 16 माला जप करूं, बहुत सोच रहा हूं, आज नहीं हुआ कल सुबह उठ के करता हूं 16 माला जप। फिर दूसरे दिन मिले प्रभु जी को, फोन किया, प्रभु जी कितना हुआ, आज बहुत सोचा था प्रभु जी, बहुत ही सोचा था, लेकिन क्या हुआ वो अचानक एक फ्रेंड का फोन आ गया, रिश्तेदार का, तो जरा उनके यहां कुछ प्रोग्राम था तो जाना। इसलिए ये विचार केवल विचार ही रह जाते, वो आचरण में नहीं, आचार वे आचरण में नहीं आते। इसलिए परसों से आने वाले रविवार से मंगल आरती के लिए आना है, मंगल आरती के पश्चात तुरंत जपा सेशन होगा ताकि विचार केवल विचार न रहे, वो आचरण में बदले। तो विचार को आचरण में लाने के लिए ये प्रयास है, तो अवश्य आना है और जप रेगुलर करना है, तो उससे उसके कारण आचरण सुधरेगा, आचरण स्ट्रिक्ट होगा, और जब आचरण में ये सब आएगा तभी तो प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए तो कहे, प्रभुपाद जी का विजन बहुत लंबा है, बहुत बड़ी दिव्य दृष्टि है प्रभुपाद जी की, आचार विचार आचार प्रचार। तो इस श्लोक में लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, भगवान यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, भगवान क्या प्रयास करेंगे, भगवान प्रयास भी करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होते हैं, वो तो हमको दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने भी प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान अर्जुन को यह कहने कह रहे हैं यहां पे कि हे अर्जुन, मेरी भाषा मिश्रित नहीं है भैया, मैं जो बोला हूं वो मिश्रित नहीं है, तुम अभी बोले हो पहले श्लोक में दूसरे श्लोक में कि मेरी भाषा मिश्रित है, ये मेरे वचन मेरी भाषा ये मिश्रित नहीं है। मैंने पिछले अध्याय में जो कुछ भी उपदेश दिया था दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से तो 30वें श्लोक तक, भगवान कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे वचन मिश्रित नहीं है। मैंने पिछले अध्याय में 11 से लेके तो 30, 11वें श्लोक से लेके तो 30वें श्लोक तक चर्चा की थी सांख्य योग की, नहीं की थी 2.11 दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक से 30वें श्लोक तक सांख्य का विषय था। देखो कृष्ण भी, कृष्ण को भी भक्त को कन्विंस करना पड़ता है, यदि शुद्ध हृदय से प्रश्न पूछेंगे ना तो भगवान एकदम तत्पर आप जैसा बनकर आपको उत्तर देंगे। तो भगवान यहां अर्जुन जैसे कि देखो भाई ऐसा नहीं है, मैंने मिश्रित वचन नहीं कहे, 11 से 30 तक तो सांख्य का विषय था और 40 से लेके 40वें श्लोक से लेके तो 72वें श्लोक तक योग बुद्धि योग का विषय था, बुद्धि योग में भक्ति योग भी था। तो ये तो दो सेपरेट बातें हुई ना, 11 से 30 तक सांख्य योग, 40 से 72 तक भक्ति योग सॉरी बुद्धि योग, अब मिश्रित कहां हुआ है, दो सेपरेट विषय पे सेपरेटली बात किया है, कहां मिश्रित हुआ। भगवान अर्जुन को इस प्रकार से कहां कह रहे पता है, युद्ध भूमि पे, इस प्रकार से चर्चा हो गई, युद्ध भूमि पे सोच सकते हैं। तो इन दोनों विषयों को पृथक पृथक समझने के लिए 39 श्लोक में देखो भगवान ने क्या कहा था, देखिए 2.39 पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए।
यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं।
बस यहां तक मैंने सांख्य योग अर्थात मैंने यहां तक अभी तक जो है बुद्धि का वर्णन सांख्य के अनुसार किया है। अब देखिए आगे का पढ़िए। अब
निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ।
दो बातें हो गई, अभी तक मैंने क्या किया है, बुद्धि का वर्णन सांख्य के माध्यम से किया है। अब ये 39 श्लोक में बोल रहे भगवान, अब अर्थात 40 श्लोक से आगे मैं क्या कहने वाला हूं, बुद्धि को योग के अनुसार कैसे उपयोग में लाया जाए ये बताऊंगा। तो दो विषय अलग अलग हो गए। तो अर्जुन तुम किस प्रकार से किस आधार पे कह रहे हो कि मैंने मिश्रण कर दिया, क्लियर आइडिया? डाउट क्लियर नॉट क्लियर? हम क्या सीखे 11वीं से 30 तक, सांख्य योग सीखे हैं, और 40 से 72 तक हम क्या सीखे हैं, एक दूसरा अध्याय स्मरण कीजिए, नहीं तो हमको 2 साल का रिवीजन करना पड़ेगा एक 10 मिनट, समय की कमी है। तो सांख्य योग पहले बताया है और अभी हम आपको बुद्धि योग बता रहे हैं 40 से लेके 72 तक। तो दो विषय एकत्र या मिश्रित नहीं हुए अर्जुन, तुम इस प्रकार से बात मत करो कि वचन मिश्रित हो गए इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, नहीं पूछते तो आगे और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। हमारा देखो 2 साल से हम रोज हम पूछना पड़ता है, कोई प्रश्न है, माता जी पूछती है उधर से प्रश्न, कोई प्रश्न है, नहीं है तो हम कोई प्रश्न पूछना पड़ता है। परंतु यहां पे अर्जुन ने प्रश्न पूछा इसलिए भगवान कह रहे अच्छा हुआ पूछा। अभी मैं क्लियर बता रहा हूं कि दो अलग अलग विषय किस प्रकार से दूसरे अध्याय में मैंने कहे। फिर मैंने तुम्हें अभी तक इस बुद्धि का वर्णन सांख्य के अनुसार किया, परंतु अब इसी बुद्धि को तुम योग के अनुसार समझो। और फिर इस श्लोक में आता है निष्ठा, निष्ठा आता है ना, भगवान क्या कहते हैं, लोके अस्मिन निधा, तो हम यहां तक देखे हैं निष्ठा, निष्ठा का अर्थ है दृढ़ विश्वास, निष्ठा अर्थात दृढ़ विश्वास। परीक्षित महाराज ने गंगा तट पर बैठे हुए सारे ऋषियों के पास जब वो आए तो परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं, उनको बताते हैं और पूछते हैं, उनको क्या बताते हैं, उनको कहते हैं कि मैंने यह संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया था परीक्षित महाराज ने, अरे इतनी भागवत कथा सुनते हैं, किस लिए, श्रवण किए कि मेरा मृत्यु आज से 7वें दिन है और ये 7 दिन का मैं सर्वोत्तम सदुपयोग करना चाहता हूं। और उत्तम सर्वोत्तम सदुपयोग क्या है, श्रवण, भागवत श्रवण। और मैंने संकल्प किया कि ये 7 दिन में अन्न पानी अन्न और जल प्राशन नहीं करूंगा और 7 दिन कथा श्रवण करूंगा, क्योंकि अनेकों जन्मों से खाते तो आ रहा हूं, क्या भला हुआ मेरा इतना खाने से, परंतु इससे मेरा भला होने वाला है ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ये 7 दिन की कथा मैं श्रवण करूंगा, इसलिए 7 दिन तक भूख और प्यास का मुझे स्मरण नहीं होगा, मैं एकाग्र भाव से केवल कथा सुनूंगा, यह मेरा संकल्प है ऋषिवर। परंतु आपके अनुसार आप बताइए, आपके अनुसार ये ठीक है या आपके अनुसार यदि कुछ इसमें आगे पीछे करना हो, 19-20 कम ज्यादा या कुछ करना हो, आप बताइए, आपकी राय दीजिए। तो ऋषियों ने क्या कहा, क्या कहा,
अलग अलग रास्ता सभी ने,
सभी ने अलग अलग रास्ता, परंतु सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, उनको कथा श्रवण करवाए, उनके उस संकल्प का, संकल्प को इतना अच्छा अनुमोदन किया कि एकदम और कथा करना शुरू कर दिया। सभी ऋषियों ने उनका बाद में अनुमोदन किया क्योंकि उनको भी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु इसी को दृढ़ निश्चय कहते हैं। यदि हमने कोई संकल्प किया है, हमने कोई दृढ़ निश्चय किया है, तो उस दृढ़ निश्चय का कंफर्मेशन साधुओं से करना चाहिए, नहीं तो शास्त्रों से करना चाहिए, तभी उसको निष्ठा कहा जाता है। मानो मैंने दृढ़ निश्चय किया है, जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, और ना ही मैंने कोई आचार्य साधु या भक्तों से चर्चा की है या उनका अनुमोदन दिया है, ऐसा मैंने नहीं किया, तो वो जो दृढ़ निश्चय है वो अहंकार में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अहंकार। और मैं कहूंगा, मैं 16 माला जप करता हूं, मेरा दृढ़ निश्चय 16 माला जप करने का, तो मैं 16 माला जप करता हूं, बाकी सारी दुनिया बेकार, सारा संसार व्यर्थ है। परंतु यदि वह व्यक्ति 16 माला जप करने का जो तरीका है, जो अधिकार, प्रत्येक बात को अधिकार, योग्यता लगती है, यदि वो अधिकार प्रभुपाद जी के परंपरा में प्राप्त कर लेता है, तो वो उसकी हो जाएगी निष्ठा, और वो निष्ठा फलित होके उसको वो मंत्र सिद्ध है, महामंत्र सिद्ध किया है, ये सिद्ध मंत्र है, मंत्र नहीं सॉरी, सिद्ध महामंत्र है। किसने सिद्ध किया इसको? साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जब वो इस महामंत्र का उच्चारण करेगा, जब प्रभुपाद महाराज की परंपरा में संकल्प करके, दृढ़ निश्चय करके जब जप करेगा इस प्रकार से, तो ये महासिद्ध महामंत्र है, ये क्या करेगा उसको? कृष्ण प्रेम तक ले जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से हमको हमारी निष्ठा बढ़ानी है, निष्ठा बढ़ानी है, अर्थात इस प्रकार के संकल्प करना है जिनको शास्त्र में मान्यता है, और भक्त उनका हमको अधिकार प्रदान करते हैं। कोई भी भक्त आके कहे कि प्रभु जी आज है ना, आप आज व्रत रखो, ऐसे ही बोलिए, तुरंत व्रत रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भक्त ने कहा है। निश्चय कर लेना चाहिए, दृढ़ता आ जाएगी और निष्ठा बन जाएगी। फिर दूसरी पंक्ति में कहा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, अर्थात सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा प्राप्त की जाती है। जो सांख्य योगी है, जो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, अर्थात जो सांख्य योगी है, ध्यान से सुनिए, जो सांख्य योगी है और ज्ञान योगी है, दोनों भी तो निष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि निष्ठा से भगवान की प्राप्ति होती है, और भक्त भी तो निष्ठा प्राप्त करना चाहते कि वो भी भगवान को जाने, सारे तो भगवान को जाने। तो यहां पे कहा गया है ज्ञान योगेन सांख्यानाम। पहले प्रश्नों का उत्तर भगवान इसमें दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि सांख्य योग श्रेष्ठ है कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, अर्थात सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा प्राप्त हो सकती, सांख्य योगियों को निष्ठा प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान योग के माध्यम से उनको निष्ठा प्राप्त हो सकती है। 39 दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा था, एशांते अभिहिता सांख्ये, अर्थात यह बुद्धि तुम्हें सांख्य के संबंध में बताई गई है। अब यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ध्यान से सुनिए, ज्यादा हेवी हो रहा है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 39 पढ़िए, 39 2.39 ट्रांसलेशन।
अथवा सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन,
हाँ, सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अभी समझ में आई इस बात को, सांख्य द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। अभी यहां पे क्या कह रहे हैं, ज्ञान योगे न सांख्यानाम, अर्थात सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा प्राप्त। अल्टीमेट सार, इस दोनों बातों का सार यह है कि सांख्यवादियों को एक वाद है, सांख्य भी एक क्या है, वाद है, अनेक प्रकार के वाद है संसार में, है कि नहीं, ये वाद वो वाद फलाना वाद ढिकाना वाद ओशो वाद फिर और कौन सा ब्रह्मवाद फिर और मायावाद, सो ऐसे बहुत सारे वाद हैं। परंतु हमारा जो वैष्णव ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय निर्विवाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। तो ये जो वाद है सांख्यवाद, सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा की प्राप्ति होती है। अब भगवान ने दूसरे अध्याय में जो वर्णन किया था ज्ञान योग का, उस ज्ञान योग में भगवान ने क्या कहा था, इस संसार में भौतिक संसार में इस पृथ्वी पे भूमंडल पे दो बातें हैं, दो विषय हैं, कौन सा, एक नित्य और एक अनित्य। इसका वर्णन भगवान ने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा था, किया था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। बताइए ये श्लोक याद करने के लिए कहा गया, क्या कहा था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं, किस प्रकार से यह देह बदलते हैं, 10 साल का जब था तो कैसा शरीर था वो कहां गया, अरे आप ही तो है वो जिनका शरीर कुछ अलग था 10 साल 15 साल पहले, किधर फेंक दिया उस शरीर को, उस शरीर कहां गया, अर्थात शरीर बदलते रहता है, परंतु आप तो वही हो, 15 साल पहले जो थे वही तो आप हो, अर्थात आप नहीं बदलते, तो आप हो कौन, अर्थात मैं आत्मा हूं, यह नित्य है और ये जो शरीर है ये अनित्य है। इस प्रकार से ज्ञान अर्थात भगवान ने नित्य और अनित्य की बात कही है, ज्ञान अर्थात क्या, नित्य और अनित्य। भगवान कहते हैं 2.13 में कि क्या नित्य है इस संसार में और क्या अनित्य, क्या गारंटेड है और किसकी गारंटी नहीं है। अब देखिए भ्रम, जिसकी गारंटी नहीं है उसको हम गारंटी मानते हैं, ऐसे अगर कुछ डिफेक्ट हो गया तो बदली करके नहीं मिलेगा क्योंकि हम माने गारंटी लेकिन है नहीं, हम मान बैठे गारंटी है, इसलिए आप कैसे भी इसका यूज कर लिया। मान लो किसी ने मोबाइल दिया आपको और कहा कि इसका 2 साल का फुल गारंटी, रिप्लेसमेंट गारंटी, फुल गारंटी, आप तो कैसा भी उसको यूज करेंगे ना, किसी भी प्रकार से फेंकेंगे तोड़ेंगे कुछ भी करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे कि इसकी गारंटी है, जब इसी प्रकार से इस शरीर की भी गारंटी समझ रहे हैं आप, हम लोग इस शरीर की भी क्या कर रहे हैं, गारंटी समझ रहे हैं, परंतु वो है झूठ बात है, भ्रम है। और जब इसको गारंटी समझने के कारण हम इसका क्या करते हैं, मिसयूज, अब्यूज, मिसयूज, और जब डिफेक्ट या कुछ गड़बड़ हो जाती है तब जब गारंटी मांगने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, नो गारंटी, प्रभु जी कहां आपको, किसने बोला था, भोगो अभी भोगो, ये है भ्रम। तो इस प्रकार से भगवान ने इस दूसरे अध्याय में जो 11-12 श्लोक है उसमें क्या कहा, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये सब बातें आपको स्मरण होनी चाहिए। इस प्रकार से सांख्य योग की जो भगवान ने व्याख्या की है, सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योगी बनना है, क्यों, क्योंकि उससे निष्ठा बढ़ती है। और सांख्य योग है क्या बला, ये क्या है सांख्य योग, उस
इसकी चर्चा है। सांख्य योग अर्थात सांख्य शब्द सुना हुआ लगता है, किस शब्द से यह सांख्य बना हो? संख्या, और संख्या अर्थात काउंटिंग है ना,
गिनती,
गणना, गिनती, काउंटिंग, मैथमेटिक्स, काउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स। सो सांख्य यह शब्द संख्या शब्द से आया है, और संख्या अर्थात गिनती करना, गिनना, गणना करना। किसकी गणना की जा सकती है? आत्मा को काउंट कर सकते कितने किलो का है? आत्मा का टेम्परेचर गिन सकते हो कितना टेम्परेचर? जो नित्य है उसको तो आप, वहां सांख्य चलेगा? जो नित्य है उसको समझने के लिए सांख्यवाद चलेगा क्या? तो सांख्य जो कर रहे, सांख्यवादी जो है वो क्या करते हैं, इस प्रकृति के स्वरूप को, इस भौतिक संसार के स्वरूप को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार के विश्लेषण करके, अनेक अलग 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 प्रकार की थ्योरीज डेवलप करके, इनके इंटर रिलेशनशिप, आंतरिक संबंध इस प्रकृति के जो अनित्य है, इसका इसका अभ्यास करके उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं। सांख्यवादी भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के जो होते हैं वो केवल यही गणित करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर भगवान का वो नहीं सोचते, उनके इसमें भगवान नहीं होते। दूसरे प्रकार के जो सांख्यवादी होते हैं वो इस प्रकार से एनालिसिस तो करते हैं, इस संसार को समझते हैं, इस प्रकृति को समझते हैं, इस प्रकृति को समझकर उसको भगवान के साथ अर्थात ओरिजिन के साथ जोड़ देते हैं। यह फिलॉसॉफी किसने कही है? यह फिलॉसॉफी कही है कपिल मुनि, कपिल देव की संवाद, श्रीमद् भागवत। परंतु दूसरे और एक कपिल हुए हैं, कंफ्यूज मत होना। वो जो दूसरे कपिल आ गए उन्होंने क्या कर दिया? केवल हिसाब किताब करना सिखाया, केवल भौतिक संसार में इस प्रकृति में क्या उल्था पुलत होती है, ये प्रकृति का क्या स्वभाव है, ये जो अनित्य है कभी भी बदलता है इसका क्या स्वभाव है बताओ, जो हमेशा बदलते रहता है उसका स्वभाव कैसे जानेंगे? परंतु वो कहे कुछ थ्योरी बताइए, कुछ सूत्र बताए हैं, सूत्र के अनुसार ये प्रकृति को हम समझ सकते हैं, परंतु उसमें भगवान नहीं है, उसमें क्या है? माइनस भगवान। तो क्या बन जाएगा? अरे कहते हैं कि इसमें क्या राम है, जिसमें राम नहीं है वो राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो दूसरा वाद सिखा रहे सांख्यवाद, इसमें तो राम ही नहीं है ना, तो फिर ये वाद कौन सा हो जाएगा? इसमें राम नहीं। सांख्य योग का अर्थ भी यही है, भगवान यहां जो बता रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, सांख्य योग को समझ के सांख्यवादियों को ने ज्ञान योग को समझ के निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, बराबर है? अर्थात इस प्रकृति को समझ के, इस प्रकृति में है, इस प्रकृति के थ्योरी को समझते हुए बुद्धि योग से क्या करना चाहिए? निष्ठा प्राप्त करना चाहिए, अर्थात उस पर तत्व को, इस प्रकृति के परे जो तत्व है उसके साथ संबंध प्रस्थापित करना चाहिए। जैसे उदाहरण है, मैंने इसके पहले भी ये उदाहरण की चर्चा हमने की थी, ये चांद चंद्र दिख रहे हैं सब, आप देख रहे हैं? बहुत लोगों नहीं दिख रहे हैं। उसके बाजू में एक चांदनी है और आकाश में एक चांदनी है, उस चांदनी को मुझे आपको दिखाना है।
तो उस चांदनी को मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊं? आकाश में चांदनी है। आप बोले क्या बोल रहे प्रभु जी, आकाश में क्या, किधर देखे आकाश क्या? तो मैं क्या कहूंगा, आपके लेफ्ट साइड में देखिए एक दीवार दिखी देखिए दीवार है ना पीले येलो कलर की है, और दीवार पे दीवार के पास में दो पेड़ है, उस पेड़ में का जो बड़ा पेड़ है उसकी ओर देखो, देखा उस बड़े पेड़ के एकदम टॉप पे देखो, और वो टॉप से सीधा ऊपर आकाश में देखो, बराबर आपको चांदनी दिख जाएगी। दिख गई? बहुत लोगों को दिख गई। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, मैंने बोला आपके लेफ्ट साइड में दीवार है और किसी ने वो दीवार को देखा, अरे क्या सुंदर दीवार है, ये कलर तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, कितना अच्छा कलर है, उसके बाजू में पेड़, अरे वाह क्या सुंदर वातावरण है, पेड़ है दीवार है रंग भी सुंदर है। हा? अब वो क्या हो गया, उन बातों में ही उलझ गया, उस उन वो दो तीन बातों ने उसको खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। मैं उसको क्या दिखाने वाला था, एकदम आसमान और उसमें तारा लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया कि उसको पेड़ और दीवार ही अच्छी लगने लगी, बोले इधर ही बहुत ही जोरदार है। अब ये है सांख्य योग, ज्ञान योग और निष्ठा, शॉर्टकट में बताया है। सांख्य योग अर्थात ये जो मटेरियल है इसका इवैल्यूएशन करना, इसके इंटरनल इंटर रिलेशनशिप, प्रकृति कैसी है, उसके स्वभाव क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसके गुण कौन से हैं, उसके अनुसार उसी में अपने उसी को सब कुछ समझना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना। लेकिन इस प्रकृति का उपयोग किस लिए है, इस प्रकृति को क्या यूज कैसे करना है, किस लिए करना है, आसमान में चांद देखने, अति उच्च गोल है ये। प्रकृति का निर्मित इसलिए हुआ है कि इसको इसके आधार पर इसका सपोर्ट लेके हमको भगवान को देखना है, अर्थात आसमान को, अर्थात भगवान जो पर तत्व है उसके साथ संबंध और निष्ठा बनानी है। वो निष्ठा बनाने के लिए सांख्यवाद ये सांख्य तो करे, वो देखे दीवार है, वो देखे पेड़ है, वो देखे उनमें क्या गुण है, ये भी देखे सांख्य और ठीक है। अब ज्ञान की शरण ले, सांख्यवादियों को ज्ञान की शरण लेना आवश्यक है, दिव्य ज्ञान की। जब वो दिव्य ज्ञान की शरण लेगा तभी तो वो पेड़ के ऊपर देखेगा और वहां से देखने का प्रयास करेगा ऊपर, और जब वो देख लेगा ऊपर पर तत्व को तब उस तत्व से उसकी निष्ठा हो जाएगी। सांख्य योग, ज्ञान योग और निष्ठा। परंतु प्रॉब्लम कहां है, अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? उधर ही पेड़ और दीवार विषय में अटक गया, यही अच्छा है, यही मेरा है, इसी से तो सब कुछ हो रहा है, यह प्रॉब्लम था। उस बात को भगवान समझा रहे अर्जुन को कि भाई मैंने कोई मिश्रित वचन नहीं कहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से कहा है, अर्जुन समझो। और यही इस श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान अनेक प्रकार के सांख्य शब्द के, श्रील प्रभुपाद जी भी अपने प्रवचन में सांख्य का अर्थ कहते हैं, प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में एक प्रवचन में सांख्य का अर्थ कहते भौतिक तत्वों का विश्लेषण करना और इसको परमेश्वर से जोड़ना, इसको सांख्य योग कहते हैं, सही सांख्य योग। मैंने कहा ना दो प्रकार के सांख्यवादी हैं, एक तो क्या करते हैं भगवान से जोड़ते नहीं है, और दूसरे जो होते हैं जिसको सांख्य योग कहा गया, जो भगवान से जोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में यही सांख्य का अर्थ किया है, और सांख्य का अर्थ दूसरा भी यह होता है कि संख्या, गणना। तो कलयुग में हमने क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। अप्लाइड साइंस, भगवद गीता इज
अप्लाइड साइंस, बड़ी बड़ी बातें नहीं, अभी घर पे जाएंगे क्या अप्लाई करेंगे भगवत गीता एवरी डे, रोज भगवत गीता का स्मरण होना चाहिए। दो साल में कोई भी, दो साल का कोई भी वाक्य रोज स्मरण में होना चाहिए, कोई भी एट रैंडम, कोई भी कहीं का, और उसको अप्लाई करें, एक एक शब्द रोज अप्लाई करना चाहिए। परंतु हम ये जानते हैं कलयुग में वैराग्य वगैरह बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कलयुग में ज्ञान और वैराग्य निष्फल है। ज्ञान और वैराग्य पद्म पुराण में, पद्म पुराण में भागवत महात्म्य 2.4 में है, भागवत महात्म्य उसमें नारद जी कहते हैं, नारद जी क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं भक्ति देवी को कि हे देवी, सत्य त्रेता और द्वापर में तो क्या था, ज्ञान और वैराग्य, ये मुक्ति के साधन थे। सत्ययुग त्रेतायुग और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य तो मुक्ति के साधन थे, परंतु कलयुग में तो केवल भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। देखो अभी आप बोलेंगे प्रभु जी एक घंटा वेस्ट किया परंतु भगवान प्रत्येक बात समझा के फिर सार बताते, ये बात बहुत महत्व की ध्यान में रखिएगा। भगवान प्रत्येक छोटे से छोटे विषय को समझाते हैं, समझाते हैं, समझाते हैं और फिर सार बताते हैं। परंतु कोई उचक्के लोग इस संसार के हम देखते हैं भगवत गीता का कोई अमुक श्लोक उठा लेते हैं तो बोलते भगवत गीता में कृष्ण ही नहीं है। ले भगवत गीता में कौन है, कृष्ण ही नहीं है, कौन है, श्री भगवान है। श्री भगवान कौन है, वो ब्रह्म है, कृष्ण का है नहीं, कृष्ण है ही नहीं, क्योंकि कोई एक श्लोक उसने उठा के पढ़ा होगा जिसमें श्री भगवान वाच उसमें कहा गया और भी कहा अहम बीज, अहम क्या श्लोक क्या है, कही मैं बीज प्रद पिता हूं, मैं सारे संसार का परम पिता हूं और उसमें मेरा जो रूप है ब्रह्म रूप है, इस ब्रह्म का भी मैं ब्रह्म ही सार है, इसका एक अर्थ बता रहा हूं। परंतु ये किसने कहा, श्री भगवान ने कहा, तो क्या कहा, मैं ब्रह्म हूं, कृष्ण का है। एक श्लोक उठा के लोग, कोई भी एक श्लोक उठा के लोग चर्चा करते, लेकिन भगवान स्वयं देखिए पहले सांख्य योग बताए, फिर ज्ञान योग बताए, फिर कर्म योग बताए, फिर बुद्धि ध्यान योग बताएंगे आगे जाके, फिर दिव्य योग की बातें करेंगे, फिर भगवान के रूप की चर्चा होगी, फिर विराट रूप क्या है, फिर प्रकृति की भी, जो हमने कहा है ये जो सब सांख्य है बदलने वाला है अनित्य है, इसका भी विषय में चर्चा करेंगे, स्वभाव के विषय में चर्चा करेंगे, इतना सब करने के पश्चात फिर सार कहेंगे। परंतु लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को ठीक से नहीं समझने के कारण कोई भी श्लोक उठा के मनगढ़ंत उसकी व्याख्या करते हैं। परंतु भगवान ने क्या किया है, भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा इस श्लोक में की है, क्योंकि भगवान भी यह जानते हैं कलयुग में ज्ञान और वैराग्य फल प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है ज्ञान और वैराग्य से, इसलिए भगवान ने ज्ञान की बात वहीं तक कही है जहां तक जरूरी है। क्या जरूरी है, वहीं तक ज्ञान की बात कही है जिसके कारण भक्ति प्राप्त हो, ये नहीं कि वो ब्रह्म सूत्र लेके भगवान बैठे हैं, नहीं, वहीं तक चर्चा की है जहां तक जरूरी है भक्ति के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सांख्य योग और भक्ति योग का अंतर क्या है, सांख्य योग अप्रत्यक्ष मार्ग है भगवान को प्राप्त करने। कोई ये कहे कि पहले इस प्रकृति को समझे समझे और फिर प्रकृति के ईश्वर को जानेंगे, तो ये प्रकृति की कोई गारंटी नहीं है, क्या समझेंगे आप, कोई एकाद व्यक्ति है रोज उसका स्वभाव बदलता है, उसके स्वभाव की क्या व्याख्या करेंगे आप? क्या कह सकते हैं? ये अप्रत्यक्ष मार्ग है, भगवान के साथ प्रत्यक्ष हमको कनेक्ट नहीं करता है, अप्रत्यक्ष मार्ग है। और भक्ति योग, भक्ति योग क्या है? हाँ प्रभु जी, व्हाट इज भक्ति योग? हाँ कैसे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। परंतु इस प्रत्यक्ष मार्ग का ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र लेते लेते मान लो कभी नींद लग गई, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो सकता है महामंत्र का जप करने से, परंतु नींद लग जाती है, उदासीनता आ जाती है, जप में मन नहीं लगता है, दौड़ता है यहां वहां, तब क्या करना चाहिए? भगवान समझ गए, तुरंत अपने आप का विस्तार किया और अर्च विग्रह के रूप में सामने आ गए। आपका मन नहीं लगता है कोई बात नहीं, आओ सेवा करो, सेवा अपने मन को मेरे चरणों पे समर्पित करो। मन मना भव मद भक्तो मध्याज माम नमस्कृ। कुछ ज्यादा मत करो, ज्यादा मत करो, आपका मन कलयुग का मन है, तुरंत बोर हो जाता है, इसलिए स्वल्पमस्य धर्मस्य, स्वल्प करो, अल्प में करो, इतना सा करो, लेकिन करो, आओ थोड़ी सेवा करो, सेवा का फल देखो, सेवा करो तो मेवा मिलेगा। सेवा का फल मिलेगा क्या? सेवा का फल मिलेगा भगवान में हमारी रुचि बढ़ेगी, भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सेवा करते वक्त हमारा संग जो होता है वो भक्तों से संग होता है, जिनकी भगवान में रुचि होती है। इसलिए भक्ति योगी क्या है? डायरेक्ट पाथ, सीधा मार्ग है जो भगवान के पास ले जाता है। सांख्य योग क्या है? पहले एनालिसिस करो इसका जरा, आप बताओ, कोई एनालिसिस करने बैठा कि बारिश कब होती है, हाँ ठंडी कितनी पड़ती है? देखो अमेरिका में -50 डिग्री टेम्परेचर और उधर अर्जेंटीना में 50 डिग्री टेम्परेचर, उधर -50 इधर +50 करो एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस किया, 15 दिन 1-2 महीना होने दो, अभी क्या हुआ? अमेरिका में 30 डिग्री टेम्परेचर, अर्जेंटीना में -30 डिग्री, अभी करो एनालिसिस, क्या एनालिसिस करोगे? सांख्य योग अर्थात ये प्रकृति के स्वभाव का विश्लेषण, और यह विश्लेषण करते 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 भगवान की शक्ति को समझना और भगवान को प्राप्त करना। बात कहने के लिए साधारण है, परंतु ये विश्लेषण में हम इतने फंस जाते हैं, जैसे कि हमने अभी कहा वो आसमान तक देखने का समय ही नहीं मिलेगा, यहीं पे हम फंस जाएंगे। अनेकों प्रकार के प्रलोभन है, आकर्षण है, और मन को तो मन कब किस पे क्या आ जाएगा कुछ बोल नहीं सकते, वेरी डेंजरस। इसलिए कहते वॉच योर माइंड एंड ईगो, अपने मन और अपने अहंकार पर नित्य ध्यान रखो, शरीर पे नहीं रखा चलेगा थोड़ी देर, अपने मन पे नित्य ध्यान रखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है अपने स्वयं के, दूसरे के नहीं, अपना अहंकार पे ध्यान रखो, दूसरे के नहीं। कई लोग कहते अरे प्रभु जी वो इतना अहंकारी व्यक्ति, अपने अहंकार पे ध्यान रखो, अपने मन पे, वॉच योर माइंड एंड ईगो, मन पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो सांख्य योग है अप्रत्यक्ष मार्ग है, भक्ति मार्ग जो है प्रत्यक्ष मार्ग है। ऐसे क्यों है? क्योंकि सांख्य योग में क्या होता है, यदि मैं स्वयं प्रयत्न करके इस प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहा हूं, अर्थात पर्सनल एंडेवर, अपने स्वयं के प्रयास के द्वारा प्रकृति को समझने का प्रयास कर, स्वयं प्रयास कर, अपने स्वयं पे निर्भर हूं। और भक्त, भगवान देंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। कृष्ण पे निर्भर है, अपने कर्म, अपने कर्तव्य कर्म या ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को भली भांति जानते हैं और कृष्ण पे निर्भर हो जाते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ये जो भक्ति मार्ग होता है वेरी इजी एंड द बेस्ट, बहुत आसान है और सर्वोत्तम है। मान लो कभी प्रयास करते करते एक आध बार मन की जैसी बात नहीं हुई तो रात भर सो नहीं पाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ? यहां पे युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। भीष्म पितामह ने प्रार्थना की है कि अब हे दुर्योधन मैं तुमको वचन देता हूं कल सुबह सारे पांडवों को खत्म कर दूंगा। कृष्ण को टेंशन आ गया, क्या हो गया क्या हो गया, भाग दौड़ कर यहां वहां। शाम का टाइम हो गया, रात हो गई 8, 8:30, 9 बज गए। अंत में उन्होंने सोचा अर्जुन के पास जाता हूं क्योंकि कल क्या होगा। भागते भागते पसीने पसीने हो गए, अर्जुन के कक्ष में गए, देखा तो अर्जुन घूर रहा है, सो रहा। अर्जुन को उठाए, भाई उठो, वो भीष्म पितामह कल तुमको खत्म करने वाले हैं। बोले मुझे क्या टेंशन है, मेरा टेंशन मैंने आपको छोड़ा है, वो टेंशन सब वो आप देखो, आप जो करना है आप, मेरा सारा मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, इसलिए चैन की नींद आ रही है, सारा टेंशन आपको मैंने अपना सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। मेरा काम क्या है, सुबह उठूंगा बांध चलाऊंगा, अपनी ड्यूटी करूंगा, आपके ऊपर डिपेंड होंगे। तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम डिफरेंस की चर्चा कर रहे हैं सांख्य और भक्ति, और 2 मिनट का समय लेंगे। और तीसरा अंतर क्या है, कोई गारंटी थोड़ी है इसमें, अपने स्वयं के प्रयत्न में कोई गारंटी है। हमने जीवन में कितने प्रयत्न कितनी बार किए हैं, कितनी बार सक्सेस मिला है, कोई गारंटी नहीं, कभी मिला कभी नहीं मिला। लेकिन कृष्ण पे डिपेंड हो जाएंगे तो सिक्योरिटी की भी गारंटी है कि नहीं, और सक्सेस की भी गारंटी, सुरक्षा और यश दोनों प्राप्त होते हैं। और सांख्य योग का चौथा पॉइंट, इस प्रकृति को मुझे समझना है, प्रकृति से मुझे समझ के उस परतत्व को समझना है, और फिर दोनों के संबंध को समझना है, फिर मेरे संबंध को समझना है इनके साथ। और ये सब समझने का है तो सबसे पहले तो बेसिक बात है कि मेरे अंदर उतना ज्ञान चाहिए और मेरे अंदर उतनी शुद्धता भी चाहिए वो ज्ञान को प्राप्त करने की। इतनी शुद्धता भी चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में, अरे ये मार्ग ही इटसेल्फ शुद्ध है। ये जो मार्ग है इसमें जो साध्य और साधन सेम, देर इज नो डिफरेंस, साधन और साध्य में कोई अंतर ही नहीं है। भगवान और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, भक्ति मार्ग, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। क्या टेंशन है, आपने मार्ग स्वीकार कर लिया अर्थात भगवान को स्वीकार कर लिया, भगवान को स्वीकार कर लिया तो हो गए शुद्ध। जिस क्षण भगवान को स्वीकार करेंगे, जिस क्षण शुद्ध हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध हृदय से कहेंगे उस समय सर्व रोगोपशमं सर्व व्याधि विनाशनम शांतिदं सर्वरिष्ठानां हरिनामानुकीर्तनम्, ये सब कुछ शुद्ध कर देगा, सारे अरिष्ट दूर हो जाएंगे, सारे प्रकार की शांति प्राप्त हो जाएगी, सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से यह विशेषकर अंतर है सांख्य योग और भक्ति योग। मैं नहीं समझता हूं कि आपको यदि कोई प्रश्न होगा देखिए भगवान कृष्ण योगेश्वर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार योगेश्वर है। भगवान क्या कहते हैं, भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि ये जो माया है ना, ये माया मेरी शक्ति है। सांख्य के चक्र में पड़ो और कोई सिर नीचे पैर ऊपर करो कि एक पैर पे हजारों वर्ष खड़े रहो, माया छोड़ेगी नहीं। कर्म करो तो भी माया पकड़ेगी, ज्ञानी बनो, ज्ञान के साथ तो माया पहले आ जाती है, ज्ञानी व्यक्ति को तो छोड़ती ही नहीं तभी माया, क्योंकि कहते हैं वो मेरी शक्ति है, मम माया दुरुत्तया, आसान नहीं है। परंतु जो मेरे भक्त है, जो मुझे शरण आ जाते हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। वो क्या होते हैं, इस माया को पार कर जाते हैं, क्योंकि भगवान योगेश्वर है भक्ति योग। इसलिए हमको भक्ति योग में रहते हुए इस योगेश्वर को प्राप्त करना है और माया को दूर भगाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई एक प्रश्न है तो पूछिए, छोटा। यस सर। इसलिए क्या है, वैष्णव परंपरा में बहुत ही अच्छी पद्धति प्रभुपाद जी ने शुरू कर दी है। प्रभुपाद जी, ये कैसे होता है, एक मान लो वो रान गाय, जानते हैं आप, गाय जो होती है रानियां रहती है जंगल में रहती है, उसको रान गाय कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, वो जंगल में रहती है, एक प्रकार की गाय होती है, जंगली गाय समझिए आप। वो जंगली गाय ऐसे ग्रुप में रहती है, जंगल में घूमते हैं, जंगल में तो शेर भी रहते हैं, तो जब वो ग्रुप में रहती है, एक बार ऐसे हो जाता है कि ये ग्रुप में गायें चलती है और दो शेर आ जाते हैं, लेकिन 30-40 का ग्रुप है, वो शेर देख के अटैक करने का प्रयास करता है, कहता 30-40 है, तुरंत भाग जाता है। परंतु शेर क्या है, पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं पीछा छोड़ा, भूखा है वो, बराबर उसके पीछे पीछे और वो देखता है, अकेला हाथ में आ जाए जरा। और जिस क्षण वो गाय, रान गाय, जंगली गाय एक आधी पीछे रह जाती है, किसी प्रलोभन के कारण कुछ घास दिख गया हो, भक्ष दिख गया हो, उस प्रलोभन के कारण पीछे रह जाती है, क्या हो जाता है, तुरंत वो शेर उसको आक्रमण करके खा जाता है मार। इसी प्रकार से जब हम दूसरों को देखते हैं, ये तो क्या है, जूनियर है, मैं तो सीनियर हो गया, 4-5 साल 10 साल हो गया, मैं तो सीनियर हो गया, ये अहंकार रूपी शेर है। अब ये भाव कब आएगा मेरे अंदर, मैं तो सीनियर, मैं तो ज्ञानी हो गया, ये मेरे अंदर भाव कब आएगा, बता सकते हैं, यदि मैं वैष्णव के संग में, मैंने अपना अलग दुकान बना लिया है, मैं वैष्णव के साथ नहीं हूं, मैं किसी का एसोसिएशन नहीं करता हूं, क्योंकि आप, मैं बोलता हूं गीता तो मेरे मुखोद्गत है, भागवतम की कथा तो कभी भी पूछी, 10-15 साल हो गए, अभी कभी, आजकल तो जरा फास्ट जा रही है ना दुनिया, अभी 2 साल में ही सब कुछ आ जाता है, 1-2 साल हो गया, मैं तो बहुत ही हुआ है। तो ये जो है, ये अट्रैक्शन से, जैसे उस गाय को कोई घास या भक्ष अट्रैक्ट करता है, वो अकेली रह जाती है, उसी प्रकार से ये जो आकर्षण है, जो मुझे कहते हैं कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मुझे वहां जाने की, इनके साथ जाने की क्या जरूरत है, इनका सुनने की क्या आवश्यकता, अभी तो मैं सुनाने वाला हो गया, और तब मेरा अहंकार बढ़ जाता है, और ये अहंकार रूपी शेर मेरे चेतना के ऊपर आकर चेतना को दूषित कर देता है, और फिर अभी वो 2-4 साल 5 साल भक्त भक्त भक्त, और 5-6 2-4 साल बाद उनको मिलो तो आप उनका होलिया देख लिए, लंबे बाल, मुंह में बिड़ी, ऐसा हो जाता है, ऐसे कई लोगों हमने देखा है। परंतु साधारण भक्त के लिए ये अलर्ट सिग्नल है, जिस क्षण मन में ये भाव आया कि मैं तो बस, तुरंत किसी वैष्णव के पास चले जाना चाहिए, वरिष्ठ भक्त के पास चले जाना चाहिए, जो शुद्ध है,
नम्र है, तुरंत चले जाना चाहिए, समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि एक विचार के पीछे सौ विचार आ जाते हैं। ऐसा भाव यदि आ गया किसी के प्रति हीन भाव, ये हीन है मैं श्रेष्ठ हूं, तुरंत अपने से जो श्रेष्ठ है उनके पास चले जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बारंबार सत्संग करो, एसोसिएशन, ABCD सबसे पहला, ABCD में द वेरी फर्स्ट ए फॉर एसोसिएशन, सत्संग। इस बॉम्बे की 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन संघ है, जनता रहती है, कितने लोग सत्संग करते हैं? 3000 भी नहीं, 3000 भी ज्यादा से ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग नहीं करते, परंतु ये दुर्लभ भी है, बहुत दुर्लभ है। यदि प्राप्त हो गया तो समझना चाहिए हमारे कई जन्मों के सत्कर्म का फल हमको अभी मिल रहा है, उसके कारण हमको सत्संग प्राप्त हो। तो ऐसे विचारों के ऊपर तुरंत इलाज करना चाहिए, बहुत बड़ी बीमारी है, वहीं पे रोक लेना चाहिए उसको और वरिष्ठ वैष्णव के संपर्क। ऐसे देखा जाए तो कभी जीवन में कोई भी प्रश्न हो तो भक्तों के साथ डिस्कस करना चाहिए। कोई भी प्रश्न आ गया, एक नॉर्मल मैं जो करता हूं, कभी मुझे कुछ प्रश्न आ जाता है, कुछ परेशानी लगती है, मैं पहला कोई भी भक्त के पास पहुंच जाता, बस ये करना चाहिए। शुद्ध भक्त के पास पहुंचिए, नम्र भक्त के पास पहुंचे, भक्त नम्र ही होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे